शांति। यह संसार परिवर्तनशील संसार है, हर पल पर परिवर्तन होता रहता है और इस बदलते परिवेश में, विज्ञान के चकाचौंध में भौतिक प्रगति तो हो रही है, लेकिन खेद की बात है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ चरित्र का पतन हो रहा है। बाहर से प्रगति और भीतर से पतन, कैसी है यह विडंबना। जैसे कोई शरीर से तो सुंदर बनता जाए, लेकिन अंतर में आत्मा की शक्ति कम होती जाए, तो वह जीवन भी क्या जीवन होगा। इसी प्रकार इस संसार में हम बाहर की सुंदरता तो देख रहे हैं, जो सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विज्ञान के चमत्कार दुनिया को और सुंदर बनाते जा रहे हैं, लेकिन जितनी ही बाहर की सुंदरता बढ़ रही है, उतनी ही भीतर की सुंदरता घटती जा रही है। और इस बात का ख्याल हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि चारों ओर सुंदरता बाह्य रूप से आकर्षित तो कर रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, दूर के ढोल सुहावने, जैसे कोई ढोल बजते हो दूर दूर, तो जो व्यक्ति बहुत दूर होगा ढोल से, तो उसे तो वे सुहावने लगेंगे, लेकिन जैसे निकट जाता जाएगा, ढोल के आवाज कान को खाते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, दूर के ढोल सुहावने। जितनी ही वो चीज निकट आने पर बदतर लगती है, उतनी ही वह दूर होने पर सुंदर लगती है। ये है आज की सृष्टि की हालत। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे फलाने स्थान पर हम जाएंगे, फलाने व्यक्ति से हम मिलेंगे, फलाने वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही उस चीज का उपयोग किया, अल्पकाल का सुख लिया, फिर उसके बाद सदा काल का उसका दुख ही आत्मा को अनुभव होने लगा, तो वह कौन सा सुख हुआ। तो वास्तव में चाहिए भीतर के आत्मा के चरित्र का उत्थान। यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के इस दूषित संसार के अंदर। लेकिन अगर हम चरित्र का उत्थान चाहते हैं, तो हम कहां से आरंभ करें। आज की दुनिया में सब चाहते तो हैं कि चरित्र का उत्थान हो, हर व्यक्ति अच्छा बने, लेकिन होता यह है कि हम दूसरे के प्रति ये चाहना अवश्य रखते हैं, पर उस समय खुद को देखते ही नहीं है। जैसे विद्यार्थी कहेगा कि हमारा शिक्षक अच्छा होना चाहिए, और शिक्षक कहेगा कि हमारे विद्यार्थी अच्छे होने चाहिए, एक माँ बाप कहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, और बच्चे कहेंगे माँ बाप अच्छे होने चाहिए, जनता कहेगी नेता अच्छा होना चाहिए, और नेता कहेगा कि जनता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि अच्छा पहले बने कौन। कहा जाता है, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले आगे आए वही सच्चा अर्जुन है और वही अर्जुन ईश्वर का प्यारा है। वही अर्जुन जो परमात्मा के निकट है, वही अर्जुन जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो ऐसा अर्जुन हमें बनना है और अपना स्व परिवर्तन करना है। अगर स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्व की उन्नति भी नहीं होगी, क्योंकि स्व उन्नति का आधार ही है स्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन के लिए चाहिए हम स्वयं को देखें। जैसे हम किसी के आगे उंगली उठाते हैं तो उसके आगे तो एक उंगली उठाते हैं, लेकिन उस समय हम खुद को 3 उंगली दिखाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति दोषी है तो मैं तो उसकी भेंट में 3 गुना दोषी हूं, तो मुझे तो 3 गुना बदलना चाहिए, उसे तो 1 गुना बदलना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परिवर्तन तो जगत में हो ही रहा है, उस परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उस बाहर के परिवर्तन को देख करके हम भीतर का परिवर्तन न करके बाहर के परिवर्तन की ओर ही आकर्षित होते रहे तो वह समय आएगा जब समय हमें नष्ट कर देगा। अगर हम संसार का परिवर्तन चाहते हैं तो पहले हमें परिवर्तन करना होगा, तब हम समय का परिवर्तन कर सकेंगे। संसार परिवर्तन के लिए समय का परिवर्तन चाहिए और समय परिवर्तन के लिए स्वयं का परिवर्तन चाहिए। वैसे तो संसार परिवर्तित हो ही रहा है, परंतु समय अनुसार हो रहा है। पर हम अगर समय को निकट लाना चाहते हैं तो हमें समय के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन स्वयं के परिवर्तन से समय को निकट लाना है, तब संसार का परिवर्तन संभव होगा। मुझे अपनी स्व उन्नति करने के लिए खुद को देखना है। दूसरों को देख करके हम न अपने परिवर्तन का तिरस्कार करें। अगर कोई दूसरा खड्डा खोद रहा है तो मैं अपने लिए खड्डा खोदूं और मैं ही गिर जाऊं, ये कौन सी समझदारी हो रही होगी। हाँ, दूसरा अगर खड्डा खोद रहा है तो वो गिरेगा, परंतु क्योंकि वो खोद रहा है तो मुझे भी खोदना चाहिए, यह रीस कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वह गिर रहा है तो मुझे भी गिरना चाहिए, ऐसी रीस कभी नहीं करनी चाहिए। जहां बुरी आदत में कोई फंस रहा है तो मुझे भी फंसना चाहिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इस लक्ष्य को कभी नहीं अपनाएं। क्योंकि गिरना बहुत सहज है, कोई बुरी आदत के लिए किसी को प्रेरित करना ये बहुत सहज है। जैसे प्रकृति में भी हम देखते हैं गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। प्रकृति में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मनुष्य अपने आप गिर जाता है, वो प्रकृति का फोर्स ही उसे गिराता है, उसे गिरने के लिए अपने भीतर से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, चढ़ने के लिए मेहनत अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि चढ़ने के लिए अंदर का साहस चाहिए। वहां बाहर की शक्ति काम नहीं आती, पर भीतर की शक्ति चाहिए। अब वह भीतर की शक्ति के लिए भीतर से ही स्व परिवर्तन का एक दृढ़ संकल्प चाहिए। वरना आज तो दुनिया में संग दोष और अन्न दोष, ये 2 प्रकार के ऐसे दोष हैं जो मनुष्य को गिरा रहे हैं, और मनुष्य उनके आकर्षण में आकर के शायद ये भूल भी जाता है कि मैं गिर रहा हूं, मेरा पतन हो रहा है। परंतु अब समय आ गया है अपने आप को पहचानने की। समय आ गया है कि हम समय को भी पहचाने। समय आ गया है ईश्वर को भी पहचानने की। और इसके आधार से हम महसूस करते हैं कि अब जो हमें करना है वो अब ही करना है। कल के लिए हम नहीं छोड़े। कहा जाता है कल का नाम काल है। कल किसने देखा, लोग वैसे ही कहते हैं कल किसने देखा। तो अगर कल किसने देखा तो क्यों नहीं वह काम जो मुझे कल करना ही पड़ेगा वह मैं आज ही क्यों नहीं कर लूं। कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये स्व परिवर्तन की बातें, विकारों को जीतने की बातें, गुणों को धारण करने की बातें, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है, हम जवानों के लिए ये सब बातें नहीं हैं। अच्छा, जब हम बूढ़े होंगे तब इन बातों के बारे में हम सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने आप से पूछें, क्या हमें गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक भी जिएंगे? क्या कोई व्यक्ति जन्म से यह कह सकता है कि मैं बुढ़ापे तक ही जीऊंगा? क्या किसी को कोई विश्वास उस प्रकार से हो भी सकता है? क्योंकि आज के इस अकाल मृत्यु के वातावरण में कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कहा गया है कल का नाम काल है। जैसे कल के लिए काल कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार काल का कोई भरोसा नहीं, काल कभी भी आ सकता है, तो वैसे ही अगर हमने कल कहा और काल आ गया तो वह काल उस कल को फिर सदा के लिए नष्ट कर देगा। तो इसीलिए कल का नाम काल है, क्योंकि कल शायद हमें नष्ट भी कर दे अगर हम कल तक इंतजार करते रहेंगे। तो इसलिए बुढ़ापे में हम अपना परिवर्तन करेंगे ये कभी नहीं सोचो। वैसे भी ये सृष्टि मानो अंतिम श्वास पर जी रही है। ऑक्सीजन दिया जा रहा है इस संसार को, जैसे किसी मरते व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन वह कब तक उस ऑक्सीजन के सहारे पर चलेगा? उसे अपना श्वास तो है ही नहीं। तो जब तक अपना श्वास नहीं, तब तक किराए पर लिया हुआ श्वास कब तक चलेगा? तो संसार की भी आज यही हालत है। जैसे किराए पर श्वास के आधार से संसार चल रहा है, आज ये समस्या, आज वो समस्या, जैसे मृत्यु तो संसार पर मंडरा ही रहा है। चारों ओर मृत्यु के घंटे दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो इसीलिए कल तक नहीं छोड़े, बुढ़ापे तक नहीं छोड़े, लेकिन ये सोचें कि जो कल करना है वह मैं आज ही कर दूं, जो आज करना है वह अभी कर दूं। क्योंकि पल में प्रलय होगी तो फिर मैं कब करूंगा? इसीलिए कल का नाम काल गाया गया है। तो परिवर्तन करने के लिए सदा सोचो पहले मैं, जो ओटे सो अर्जुन। लेकिन जहां पर अधिकार देने की बात आती है वहां पर हम कह सकते हैं पहले आप। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में मनुष्य के अंदर इतना अभिमान है, जो अभिमान के फल स्वरूप, लोभ के फल स्वरूप, जहां अधिकार लेने की बात आती है वहां वो कह देगा पहले मैं, और जहां परिवर्तन करने की बात आती है वहां कह देगा पहले आप। एक पिता के चार बच्चे थे, एक मिसाल हमें याद आता है। जब वह पिता जीवित था तो कोई भी बच्चा अपने पिता के निकट नहीं जाना चाहता था। हर बेटा कहे कि पहले वो बेटा पिता के निकट जाए तो मैं भी जाऊं, अगर वो नजदीक नहीं जाता है तो मैं क्यों जाऊं। और चारों बच्चों ने यही सोच लिया, पहले वो बेटा जाए, दूसरा कहे पहले वो जाए, तीसरा कहे पहले वो जाए, और परिणाम स्वरूप कोई भी बेटा अपने पिता के निकट नहीं आया। और अंत में पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जब मृत्यु हुई तो बात आई कि कौन से बेटे को प्रॉपर्टी दी जाए। तो चारों बच्चे आ गए नजदीक, वो कहे मैं इनका बेटा हूं, मैं अधिकारी हूं। दूसरा कहे मैं अधिकारी हूं। तीसरा कहे मैं भी अधिकारी हूं क्योंकि मैं बेटा हूं। और चौथा कहे मैं तो हूं ही अधिकारी क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं। तो देखा गया कि जहां परिवर्तन करने की बात थी वहां वे कहते थे पहले आप, लेकिन जहां अधिकार लेने की बात आती थी वहां पर कह दिया पहले मैं। लेकिन वह पिता भी बड़ा समझदार था, उसने अपनी विल बच्चों के नाम पर नहीं की, एक ट्रस्ट के नाम पर अपनी विल कर दी और फलस्वरूप उसका सारा धन सेवा में लग गया। क्योंकि बच्चे उनके नालायक निकले, बच्चों ने उन्हें साथ नहीं दिया। तो जब जीवित रूप से साथ नहीं दिया तो मरने के बाद क्या साथ देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जहां परिवर्तन की बात आती है वहां सदा कहो पहले मैं, जो ओटे सो अर्जुन। अगर परिवर्तन के लिए कहा पहले आप तो अधिकार भी वही ले लेगा, क्योंकि जो परिवर्तन करेगा वही अधिकार भी लेगा। आज हम अधिकार की बातें तो करते हैं लेकिन परिवर्तन की बातें नहीं करते। इसीलिए हमें पहले परिवर्तन की बातें सोचनी होगी, उसके बाद अधिकार की बातें, क्योंकि परिवर्तन से अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अधिकार तो जैसे हमारी परछाई है और परिवर्तन हमारा कर्म है। जैसे कर्म के बाद उसका भाग्य फल तो मिलना ही है, कहाँ जाएगा फल, लेकिन उसके लिए पहले कर्म करना जरूरी है। फल खाना चाहते हैं और बीज बोना नहीं चाहते तो फल भी कहाँ से मिलेगा, बिना बीज के तो फल आएगा नहीं। इसीलिए परिवर्तन है बीज और अधिकार है उसका फल। और हम बिना बीज के फल खाना चाहते हैं तो अधिकार भी नहीं मिलता है। अब हमें किस किस बात में परिवर्तन करना है, थोड़ा सा सोचें। परिवर्तन करने का लक्ष्य तो हमने माना, समझ गए कि परिवर्तन हमें करना जरूरी है, लेकिन कैसे परिवर्तन करेंगे, किस बात में परिवर्तन करेंगे। वैसे तो कहा जाएगा कि जैसा समय, जैसी स्थिति, जैसा व्यक्ति, वैसे अपने आप को मोल्ड करना, ये है परिवर्तन। जिस समय जिस बात की आवश्यकता, उस आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपने मन की स्थिति को उसी रूप में ढालना। अर्थात मन में मान लीजिए शांति की आवश्यकता है पर परिस्थिति अशांति की है, लेकिन परिस्थिति अशांति की होते हुए भी हम अशांति की परिस्थिति में उस रूप में नहीं ढालेंगे, ये परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन परिवर्तन करने के लिए अंतर का परिवर्तन चाहिए, अर्थात मन के अंदर एक शांति की शक्ति बनाए रख करके अशांत वातावरण को भी शांति का दान देने का परिवर्तन करना है। परिस्थिति के आधार पर स्वयं का परिवर्तन कर लेना तो परिस्थिति मालिक हो गई और मैं गुलाम हो गया। पर होना चाहिए कि परिस्थिति का मैं परिवर्तन कर लूं, ये है सूक्ष्म बात। लेकिन मोटे रूप में हम कहेंगे जैसी परिस्थिति वैसी अपनी स्थिति को बनाना होता है। मेरे पास तो बहुत कुछ है पर मुझे क्या देना है वो उस आधार पर निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए। जैसे आप का बहुत बड़ा दुकान हो, आप बहुत कुछ अपने दुकान में बेचते हैं, लेकिन आपके पास जो ग्राहक आएगा उसे क्या चाहिए वह आपको समझना होगा और उसके अनुसार उसे देना होगा। तो दुनिया के अंदर कई प्रकार के लोग आपके सामने आएंगे, कोई तो वस्तु मांगने आएंगे, कोई आपसे शांति मांगने आएंगे, कोई आपसे दुआ मांगने आएंगे, कोई आपसे खुशी मांगने आएंगे, सभी व्यक्ति कोई वस्तु मांगने आपके पास नहीं आएंगे। तो जैसा व्यक्ति आपके सामने आए उसी अनुसार वही परिस्थिति अनुसार अपना परिवर्तन करके उसे वो प्रदान करना, ये है वास्तव में स्व का परिवर्तन, क्योंकि उसके आधार पर ही विश्व का परिवर्तन होगा। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बुरी दृष्टि से मेरे सामने आ रहा है और वह सोचता है कि इस व्यक्ति से मुझे शक्ति की प्राप्ति हो, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मुझे शक्ति चाहिए, तो उस समय हमें शक्ति रूप बनकर के उस कमजोर व्यक्ति की दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। परंतु उसके लिए पहले स्वयं में शक्ति भरनी होगी, शक्तिशाली संकल्प करने होंगे, तब हम अपना परिवर्तन करके उस आत्मा का भी परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन पहले से ही ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति मेरे प्रति बुरी दृष्टि क्यों रख रहा है और मैं उत्तेजित होकर के गुस्से में आकर के कुछ बुरा भला कह दूंगी तो उसकी दृष्टि और बुरी बनेगी मेरे प्रति। लेकिन अगर मैं उसकी दृष्टि को सुधारना चाहता हूँ, शुद्ध बनाना चाहता हूँ, तो पहले मुझे अपने अंदर में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना होगा, पवित्र दृष्टि अपनानी होगी, शांति की स्थिति बनानी होगी और उसके बाद उस अशांत आत्मा को, अशुद्ध विचार वाली आत्मा को संकल्पों की शक्ति के माध्यम से परिवर्तन करना होगा। इसीलिए पहले मुझे मोल्ड होना है और मोल्ड होने के लिए गोल्ड बनना है, परंतु सच्चा गोल्ड या सोना तब हम बन सकेंगे जब आग में पड़ेंगे। आग में पड़े बिना सोना भी मुड़ नहीं सकता। तो परमात्मा की याद की अग्नि ऐसी शक्ति है जिसके आधार से हम सहज ही अपना परिवर्तन कर लेते हैं और फलस्वरूप हम इस सारे विश्व का परिवर्तन करने में अपना योगदान दे सकते हैं। मान लीजिए आज दुनिया में लोग विश्व शांति की बातें करती हैं, बहुत बातें होती है विश्व शांति की बातें। कई लोग तो अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शांति जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, अगर शांति हो गई तो वह तो एक निर्जीव स्थिति है, इसीलिए शांति जैसी कोई चीज है ही नहीं। और दूसरी ओर दुनिया में शांति के लिए लोग चिल्लाते हैं, विश्व शांति के लिए सम्मेलन करते हैं, विश्व शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, तो अवश्य वह भी कोई चीज है। परंतु विश्व शांति लाने के पहले व्यक्तिगत शांति की आवश्यकता है। जब तक व्यक्तिगत शांति नहीं होगी तब तक विश्व में शांति कभी नहीं आएगी, और व्यक्तिगत शांति के लिए मन का परिवर्तन अति आवश्यक है। उसके लिए स्मृति का परिवर्तन चाहिए, फिर दृष्टि का परिवर्तन चाहिए, संस्कार का परिवर्तन चाहिए, बोल का परिवर्तन चाहिए, कर्म का परिवर्तन चाहिए। तो स्मृति, दृष्टि, कर्म, बोल और संस्कार, इन पांचों बातों के परिवर्तन के आधार पर ही हम कह सकते हैं स्व परिवर्तन। तो पहले पहली बात है मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्मृति का परिवर्तन। और स्मृति का परिवर्तन अर्थात जो हम खुद को देह देखते हैं, उस देह की बजाय अंदर ही मन में यह स्मृति रखना कि मैं एक आत्मा हूं, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है खुद के अंदर। और उस स्मृति के परिवर्तन के बाद दृष्टि का परिवर्तन, इस दृष्टि के द्वारा भी मैं सबको आत्मा ही देखूं, आत्मा देख करके उनके गुणों को ही देखूं, यह है दृष्टि का परिवर्तन। तो जब स्मृति का परिवर्तन होगा, दृष्टि का परिवर्तन होगा, तो बोल का परिवर्तन तो स्वाभाविक होगा ही, क्योंकि देह को देखने से विकार ही मन में उत्पन्न होंगे। और जैसे आत्मा को देखा तो स्मृति, दृष्टि और बोल का परिवर्तन होगा और हम उनके गुणों का ही वर्णन करेंगे। और जहां बोल परिवर्तन है वहां संस्कार परिवर्तन, कर्म परिवर्तन भी सहज हो सकता है, क्योंकि हम आत्माओं के प्रति करते हैं ये हम मन में सोचें, आत्माओं के लिए ही हम व्यवहार कर रहे हैं, आत्माओं को ही देख रहे हैं, तो फल स्वरूप संस्कार भी हमारा सहज ही परिवर्तन होगा। तो विश्व परिवर्तन करने से पहले स्व का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं, परमात्मा भी यही कहते हैं कि विश्व परिवर्तन का बोझा तो तुम मुझे दे दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये भगवान का काम है, क्योंकि भगवान विश्व के रचयिता है, विश्व के मालिक हैं, संसार चलाने वाले हैं, दाता हैं, हम उनकी रचना हैं, तो वह जिम्मेदारी तो ईश्वर की है। हाँ, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है स्वयं के परिवर्तन की जिम्मेदारी है। तो जहां अधिकार लेने की बात आए वहां आप दूसरों को अवश्य आगे रखो, खुशी से आगे रखो, नम्र होकर के आगे रखो, त्याग करके भी आगे रखो, और ये ना भूलें कि किसी को आगे रखने से आप पीछे नहीं होंगे, आपका अधिकार परछाई के रूप में आपको प्राप्त होगा, पर उसके लिए पहले चाहिए अंतर से स्व का परिवर्तन का बीज बोना, और वह बोकर परिवर्तन लाकर विश्व परिवर्तन में अपना योगदान दे। ओम शांति।